नमस्कार भारत, आज है 14 जनवरी दिन रविवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू आज पहुंचेंगे भारत। 4 दिन के दौरे में कई अहम समझौतों पर दस्तखत की संभावना। नेतन्याहू के साथ 11 साल के मोशे भी होंगे जिनके माता पिता 2008 के मुंबई हमले में मारे गए थे। शिक्षा को लेकर सेना प्रमुख के बयान की जम्मू कश्मीर सरकार ने की कड़ी निंदा। न्यूज मेकर्स में आज सुनिएगा स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल करने वाली आंचल ठाकुर को।
जो हमारी रेस थी वो इतनी डिफिकल्ट थी कि जो हमारी टॉपर है उसके भी 140 से कम पॉइंट्स नहीं आए, तो ये सब कुछ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज अपने 5 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। इस दौरे पर उनके साथ 100 से अधिक सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भी होगा, साथ ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक रोड शो में भी भाग लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों के चीफ जस्टिस के खिलाफ आवाज उठाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कल इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच को विचार करना चाहिए। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 7 सदस्यों की टीम बनाई है जो वरिष्ठतम 5 जजों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के अन्य सभी जजों के साथ इस मामले पर चर्चा करेगी। कल अमेरिका के हवाई द्वीप पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की चेतावनी गलती से जारी हो गई। इसका संदेश लोगों के फोन तक चला गया और टीवी एवं रेडियो पर यह तक खबरें प्रसारित हो गई कि लोग बचने के लिए सुरक्षित जगह तलाश करें। राज्य के गवर्नर ने इस गलती के लिए माफी मांगी है।
Early this morning, an error was made and a false alarm was sent.
आज सुबह एक गलती हो गई और भूल से सेल फोन, टीवी, रेडियो पर गलत संदेश चला गया। हम इसकी जांच कर रहे हैं और हम जल्दी जान गए कि यह भूल है और गलत अलार्म का संदेश हमने भेजा। ये नहीं होना चाहिए था। ये थे हवाई द्वीप के गवर्नर डेविड ईगे के शब्द। दाम और टैक्स की बढ़ोतरी से देश की गरीब जनता की मदद के लिए ट्यूनिशियाई सरकार ने अपनी योजनाओं की जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि 2.5 लाख परिवारों की मदद के लिए वो 7 करोड़ डॉलर अलग रखेगी। ये घोषणा अरब क्रांति के बाद ट्यूनिशिया की पुरानी व्यवस्था को बर्खास्त किए जाने की 7वीं सालगिरह पर हुई। संवाददाताओं का कहना है कि अधिकतर जनता आर्थिक कठिनाइयों के कम न होने से निराश है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कई रिपोर्टों के अनुसार विद्रोहियों के कब्जे वाले सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाकों में क्लोरीन गैस का हमला हुआ है। बीबीसी को जितना मालूम चला है उसके अनुसार रोजाना बमबारी के बीच रहने वाले पूर्वी गूटा क्षेत्र के लोगों ने एक मिसाइल हमले के बाद एक गैस की गंध को महसूस किया। स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि 6 लोगों की सांस संबंधित मामूली तकलीफों का इलाज किया गया है। पूर्वी गूटा के बाहर विद्रोहियों के कब्जे वाले हारस्ता शहर में भूमिगत रह रहे एक शिक्षक यूसुफ इब्राहिम स्थिति का वर्णन करते हैं।
Today is not so difficult as it was yesterday because
आज उतना मुश्किल दिन नहीं जितना कल था, क्योंकि कोई युद्धक विमान नहीं है या अब तक कोई धावा नहीं बोला गया है। सिर्फ जमीन से जमीन पर रॉकेट हमले हुए जिसने इमारतों और हारस्ता की जनता को निशाना बनाया। ये थे एक शिक्षक यूसुफ इब्राहिम के शब्द। इराक की राजधानी बगदाद के उत्तरी बाहरी इलाके में एक आत्मघाती विस्फोट में 8 लोग मारे गए हैं। पवित्र शहर कदीमा की ओर जा रही सड़क के एक चेक पॉइंट पर एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। बगदाद की प्रांतीय परिषद के प्रमुख ने कहा है कि उनका काफिला निशाने पर था और मारे गए लोगों में उनका एक अंगरक्षक भी है। ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि हमला किसने किया था। दावोस में इस महीने के आखिर में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के विरोध में स्विट्जरलैंड की राजधानी बन में पूंजीवादी विरोधी हजारों लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शनकारियों ने वामपंथी प्रतीक और नारे लिखे बैनर ले रखे थे। प्रदर्शनकारियों का मार्च अमरीकी दूतावास तक जाना था लेकिन पुलिस की नाकेबंदी के कारण इसे वापस मुड़ना पड़ा। दूर दक्षिणपंथी दल फ्रीडम पार्टी के सरकार में शामिल होने के खिलाफ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कम से कम 20,000 लोगों ने प्रदर्शन किया है। बच्चों के साथ सड़कों पर उतरे लोगों ने नाजीस आउट के नारे लगाए। 2 दिन पहले दूर दक्षिणपंथी आंतरिक मंत्री ने सुझाव दिया था कि शरण चाहने वालों को एक जगह के लिए ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। उन्होंने इस बात को खारिज किया कि वो नाजी शिविरों का आह्वान कर रहे थे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी खबरों में सुना, आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा के साथ चार दिन के दौरे पर दोपहर बाद भारत पहुंच रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर इसराइली नेता के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पिछले साल जब नरेंद्र मोदी इसराइल गए थे तो उनका नेतन्याहू ने भव्य स्वागत किया था और दोनों नेताओं की दोस्ती सुर्खियों में रही थी। नेतन्याहू की इस यात्रा को नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा का जवाबी दौरा भी माना जा रहा है। इस मौके पर रक्षा, कृषि और जल प्रबंधन संबंधी कई अहम समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले दिनों की घटनाओं को देखते हुए दोनों देशों के रिश्ते में थोड़ी दरार पड़ती नजर आ रही है। हमारे संवाददाता जुबैर अहमद इन दिनों इसराइल में हैं, जहां से उन्होंने हमें ये विशेष रिपोर्ट भेजी है।
मैं इस समय इसराइल डिफेंस इंडस्ट्रीज की एक फैक्ट्री में हूं, जहां चारों तरफ ड्रोन्स रखे हैं। कुछ आधे तैयार हैं और कुछ पूरी तरह से मुकम्मल। भारत की सशस्त्र सेना इन ड्रोन्स का सालों से इस्तेमाल कर रही है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी युवाश रूबिन कहते हैं कि भारत उनकी कंपनी का सबसे बड़ा ग्राहक है।
I think I would like to say that IAI consider India, the Indian Defense Forces.
मेरे विचार में IAI भारत और इसकी सशस्त्र सेना को अपना पार्टनर मानती है, ग्राहक नहीं। इंडियन उद्योग के साथ हमारा अच्छा संबंध है। ये थे रूबिन के विचार। यरूशलम से 1.5 घंटे की दूरी पर तेल अवीव शहर के नज़दीक रक्षा का सामान बनाने वाली ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है। कड़ी सुरक्षा वाली इस फैक्ट्री में हमारी और हमारे सामानों की अच्छी तरह से जांच हुई, जिसके बाद ही हमें अंदर जाने दिया। सुरक्षा के मैदान में भारत के इसराइल से गहरे संबंध हैं। पिछले 25 सालों में अब तक $10 अरब का सौदा हो चुका है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रविवार से भारत के चार दिनों के दौरे पर हैं। उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी भारत से संबंध को और भी मजबूत बनाना। रक्षा ही ऐसा एक क्षेत्र है जहां इसे मजबूत करने की अधिक गुंजाइश मौजूद है, लेकिन हाल में भारत से इसराइल को झटके मिले हैं, जिनसे रिश्तों में उत्साह कम नजर आ रहा है। इसराइल को भारत ने पहला झटका उस समय दिया जब इसने संयुक्त राष्ट्र में यरूशलम को लेकर फलस्तीनियों के पक्ष में वोट दिया। दूसरा उस समय जब भारत ने अचानक $0.5 अरब का रक्षा संबंधी इसराइली कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। इसराइल इन झटकों से अब भी उभरने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए स्थानीय मीडिया में कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि नेतन्याहू भारत जा ही क्यों रहे हैं। कुछ ने कहा कि दोनों देशों के बीच रोमांस है, गहरा रिश्ता नहीं। इसराइल भारत सांस्कृतिक संबंधों पर गहरी नज़र रखने वाली शलवा वाइल के अनुसार रोमांस भी फीका पड़ता जा रहा है। मैंने अपने एक लेख में लिखा है कि दोनों देशों के बीच प्यार में दरार पड़ी है। जब पिछले साल मोदी और नेतन्याहू ने एक दूसरे को गले लगाया था तो मैं वहां मौजूद थी। मुझे लगा ये दिखावा नहीं है, बिल्कुल सच है। सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू फीके पड़े रोमांस को दोबारा जिंदा कर पाएंगे। ये थे शब्द शलवा वाइल के। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार 2010 में जितना था उसके मुकाबले में आज कुछ कम ही है। ये व्यापार लगभग $5 अरब सालाना का है, जबकि क्षमता इससे बहुत अधिक है। इसराइल इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की चेयरपर्सन अनत बर्नस्टाइन कहती हैं कि दोनों देशों के व्यापारियों में फासले अब भी बहुत हैं। इसराइली अब तक नहीं समझ सके हैं कि भारत में काम करने का माहौल अलग है। हम अमेरिका और यूरोप के साथ काम करने के आदि हैं और इसीलिए हम उन्हें बेहतर समझते हैं। भारत में सोच अलग है। इसराइली जब भारत जाते हैं तो वो भारतीयों से उम्मीद करते हैं कि काम तेजी से होगा, जैसे कि अमेरिकियों के साथ होता है। लेकिन भारत में अफसरशाही है, यहाँ फैसले लेने में समय लगता है। ये थे शब्द अनत बर्नस्टाइन के। वो कहती हैं कि 2018 से इसमें बदलाव आने की पूरी संभावना है। उनके अनुसार दोनों देशों के बीच व्यापार में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। इसराइल भारत को कटिंग एज टेक्नोलॉजी में मदद कर सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सहयोग दे सकता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इसके व्यापारियों को भारत के बाजार को समझना होगा। भारत में माल उम्दा हो लेकिन दाम कम, इसराइली व्यापारियों को अब ये समझ में आने लगा है। कुछ विशेषज्ञों से बात करने के बाद ये पता लगा कि 80 लाख आबादी वाले इसराइल के लिए 1 अरब से अधिक आबादी वाले भारत के साथ सौदा करना अपनी क्षमता से अधिक कोशिश करने के बराबर है। इस समय बेंजामिन नेतन्याहू को अपने ही देश में ढेर सारी समस्याओं का सामना है। भारत का दौरा इस मायने में उन्हें राहत दे सकता है, जैसा कि अनत कहती हैं।
During this trip he's going to enjoy himself, okay? First he'll be out of the Israeli,
मैं सोचती हूँ कि नेतन्याहू इस यात्रा से राहत महसूस करेंगे, इसराइली मीडिया से बचे रहेंगे जो कि उनके पीछे पड़ा रहता है। इंडिया में मीडिया उनका स्वागत करेगी, इसीलिए इंडिया जाकर वो खुश होंगे और राहत महसूस करेंगे। ये थे शब्द अनंत के। यहाँ विशेषज्ञों का मानना है कि इसराइली प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी चुनौती होगी भारत के साथ रिश्तों में स्ट्रेटेजिक गहराई पैदा करना। किसी ने यहाँ खूब कहा है कि रोमांस से इन दोनों देशों के बीच रिश्ते को अब आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब देखना यह है कि नेतन्याहू इसे आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं या नहीं। जुबैर अहमद, BBC यरूशलम।
इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के प्रतिनिधिमंडल में 11 साल के मोशे भी शामिल हैं, जिनके माता पिता की 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले में मौत हो गई थी। मोशे की परवरिश इसराइल में उनके नाना नानी कर रहे हैं। अपने माता पिता को खोने के बाद वो पहली बार मुंबई जाने वाले हैं। हमारे संवाददाता जुबैर अहमद इसराइल में उनके घर अफूला गए और उनके नाना राबाई रोजनबर्ग से मिले। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
26 नवंबर 2008 की रात को मुंबई शहर पर एक बड़ा मिलिटेंट हमला हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। 5 जगहों पर ये हमले हुए थे, जिनमें एक जगह थी शबाड हाउस, जो दक्षिण मुंबई में यहूदियों का एक गढ़ है, मरकज है। वहाँ पर 6 लोग मारे गए थे, जिनमें एक बच्चा था, उसके पिता और उसकी माँ का भी देहांत हुआ था उसमें, वो भी मारे गए थे। बच्चा सिर्फ 2 साल का था। उसके बाद वो इसराइल वापस उसको लाया गया अपने माँ बाप के घर में, जहाँ पर उसके नाना तब से इसकी देखभाल कर रहे हैं, उसकी परवरिश कर रहे हैं। वो इस समय हमारे सामने हैं।
9 years ago, Moshe boy is coming to here, to Afula.
नौ साल पहले जब मोशे यहाँ अफूला आया, तो उस समय वो रोता ही रहता था। वो कहता था, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। धीरे धीरे उसने मुझे और मेरी पत्नी को अपना लिया। शुरू में उसकी आया सैंड्रा ने उसकी देखभाल की। वो भारत से आकर इसराइल में रहने लगी और इन दिनों जेरूशलम में रहती है। मोशे के बिस्तर के ऊपर उसके माता पिता की एक बड़ी तस्वीर लगी है। वो हर रात उन्हें गुड नाइट कहकर सोता है और सुबह उनकी तस्वीरों को देखकर गुड मॉर्निंग कहता है।
माय फादर, गुड नाइट माय मदर, आई डोंट कैन फॉरगेट।
मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मोशे प्रधानमंत्री मोदी से मिला और उन्हें हेलो कहा। तब प्रधानमंत्री मोदी ने मोशे से पूछा था, क्या बोलना चाहते हो? मोशे ने कहा था, आई लव यू। अभी मिस्टर नेतन्याहू जा रहे हैं इंडिया, तो आप भी जाएंगे और मोशे भी जाएगा। क्या मोशे बहुत ही उत्साहित है इस विजिट को लेके? बुधवार को हम मुंबई के शबाड हाउस जाएंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा वहाँ मौजूद होंगी, वहाँ मोशे भी होगा। कोई इंक्लिनेशन उसने दिखाया है कि वो भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह राजभाई बनना चाहता है?
Now you are small boy.
मैं उसे बताना चाहता हूँ कि तुम अभी छोटे हो, जब तुम 20-22 साल के होगे तब वहाँ जाना, उसी तरह से जैसे तुम्हारे पिता रैबाई बन गए।
Same good. What your father or mother take this?
Thank you very much for talking to us. तो ये थे नाना मोशे के, जो बता रहे थे कि जब वो यहाँ 2 साल का था, जब यहाँ आया था, और उसको किस तरह से उन्होंने इसकी परवरिश की, और अब जब वो 11 साल का हो गया है तो इंडिया जाना चाह रहा है, तो कितना इच्छुक है, कितना एक्साइटेड है वहाँ जाने के लिए।
जुबैर अहमद की रिपोर्ट। इसराइल के प्रधानमंत्री की आज से शुरू हो रही भारत यात्रा पर दिल्ली से निकलने वाले अखबारों ने क्या कुछ लिखा है, आइए जानते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद से। जी शाहिद
जी। अमरीश जी, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, मोदी विल ब्रेक प्रोटोकॉल टू रिसीव नेतन्याहू एट एयरपोर्ट, यानी مودی خود ریسیو کرنے جائیں گے انہیں ایئرپورٹ پر اور وہ پروٹوکول توڑیں گے. اس کے علاوہ انڈین ایکسپریس لکھتا ہے نتن یاہو شروع کریں گے آج سے بھارت دورہ, رکشا اور سرکشا سودا رہے گا کیندر میں. کچھ خبریں جو ہیں وہ دلی سے بھی ہیں. دلی میں جس طریقے سے یہودی رہتے ہیں, ایک خبر ہے ہندوستان ٹائمز کے اندر پنوں میں کہ ایک یہودی ربی ہیں عقیوا ساؤنڈری جو دلی میں ہی رہتے ہیں اور وہ ان کی خبر کو لے کے ہیڈنگ لگا رکھی ہے, ربی فرام اسرائیل ایز ایٹ ہوم ان دہلی, مطلب اسرائیل کا ربی جس کا گھر دلی میں ہے. اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کے چار ججوں نے نیائے پالیکا میں لوکتنتر پر چنتا ظاہر کی تھی ان سے سمبندھت سبھی خبریں آج پہلے پنے پر ہے. انڈین ایکسپریس جسٹس کورین جوزف کے حوالے سے لکھتا ہے کہ باہری ہستکشیپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی سمبندھ میں ہی بھاجپا نیتا رام مادھو کا بیان چھپا ہے انڈین ایکسپریس کے ہی پہلے پنے پر. انہوں نے کہا ہے کہ کلاس ہو یا سپریم کورٹ, انوشاسن آوشیک ہے. وہیں جاگرن کی ہیڈنگ ہے سپریم کورٹ میں کوئی سنکٹ نہیں, چیف جسٹس دیپک مشرا کے خلاف آواز اٹھانے والے دو نیایادھیشوں کے بدل گئے سر. تو یہ اس نے اپنے حوالے سے لکھا ہے ان کے. اس کے علاوہ دا ہندو کے پہلے پنے پہ ایک بہت اہم خبر میں دیکھ پا رہا ہوں اس وقت کہ ایک ادھیکاریوں کے حوالے سے خبر ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے راشٹریہ سرکشا سلاحکاروں نے حال کچھ سمے میں چار ملاقاتیں کی ہیں اور وہ لگاتار فون پر بات چیت بھی کر رہے ہیں, جو بھارت پاکستان کی بات چیت کی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ نوبھارت ٹائمز اخبار کے پہلے پنے پر خبر ہے کہ کل ممبئی میں او این جی سی کے ایک ہیلی کاپٹر جو سمندر میں گر گیا تھا وہ اس میں پانچ شو برآمد کیے گئے ہیں اب تک. اور دینک جاگرن کے ہی پہلے پنے پر ایک خبر ہے کہ گھریلو سائیکا سے مہیلا ڈاکٹر نے کی حیوانیت. دلی کے ماڈل ٹاؤن علاقے میں ایک مہیلا ڈاکٹر دوارا اپنی نابالغ گھریلو سائیکا کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ سامنے آیا ہے.
جی, اخباروں کی سمیکشا کے لیے محمد شاہد آپ کا بہت بہت شکریہ.
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर.
بھارت پرشاست جموں کشمیر کی سرکار نے سینا پرمکھ بپن راوت کے اس بیان کی کڑے شبدوں میں آلوچنا کی ہے جس میں انہوں نے راجیہ کی شکشا پرنالی کی سمیکشا کی ضرورت بتائی تھی. شکروار کو سینا پرمکھ نے کہا تھا کہ جموں کشمیر کے اسکولوں میں ادھیاپک اپنے یہاں پڑھنے والے چھاتروں کو دو نقشے دکھاتے ہیں, ایک بھارت کا اور دوسرا جموں کشمیر کا. اس پر جموں کشمیر سرکار نے کہا ہے کہ سینا پرمکھ کو راجیہ کے شکشا سے جڑے معاملوں میں دخل نہیں دینا چاہیے. سنیے شری نگر سے ماجد جہانگیر کی رپورٹ.
شنیوار کو راجیہ کے شکشا منتری سعید الطاف حسین بخاری نے سینا پرمکھ بپن راوت کے بیان پر پلٹ وار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ شکشا کے معاملوں میں ایک شکشک ہی باشن دے سکتا ہے, نہ کہ ایسے لوگ جنہیں سمیدان نے ان کے لیے الگ کام سونپ دیا ہو. انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اپنا کام کیسے کرنا چاہیے, ہمیں دوسروں کے باشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. الطاف حسین بخاری.
ایجوکیشن از اے اسٹیٹ ڈومین, اس میں کوئی آرمی چیف کا کوئی رول نہیں ہے, ہی از اے ڈیکوریٹڈ آفیسر, وہ اپنا کام کریں, ان کا کام الگ ہے.
سینا پرمکھ نے شکروار کو دلی میں آرمی ڈے کے اوسر پر بتایا تھا کہ کشمیر کے اسکولوں میں پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسکولوں میں چھاتروں کو دو نقشے دکھائے جاتے ہیں, ایک نقشہ بھارت کا اور ایک نقشہ جموں کشمیر کا. شکشا منتری نے کہا کہ ہمارے راجیہ کا اپنا الگ سمیدان ہے اور اپنا الگ جھنڈا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر راجیہ کا اپنا ایک نقشہ ہوتا ہے اور اگر کشمیر میں بھی شکشک چھاتروں کو الگ نقشہ اور الگ جھنڈے کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس میں کون سی برائی ہے. سعید الطاف حسین بخاری.
ہر ریاست میں اپنی ریاست کا میپ بھی دکھایا جاتا ہے, اس میں ہم نے کون سا, آئی ڈونٹ نو واٹ ہی مینز, واٹ ہی سیز, دیئر از نو ہارم, وی ہیو اے سیپریٹ کانسٹیٹیوشن, وی ہیو اے سیپریٹ فلیگ.
ان کا کہنا تھا کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ سینا پرمکھ نے کس لیے اور کیوں ایسا کہا, لیکن اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں. سعید الطاف حسین بخاری ستاداری پی ڈی پی کے ودھائک ہیں اور راجیہ کی پی ڈی پی بی جے پی گٹھ بندھن سرکار میں منتری ہیں. سینا پرمکھ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ جموں کشمیر کا الگ نقشہ کیوں ہونا چاہیے. انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا کہ چھاتر سمجھتے ہیں کہ میں اسی دیش کا حصہ ہوں اور ساتھ ہی میری الگ ایک پہچان بھی ہے. سینا پرمکھ نے یہ بھی کہا تھا کہ کشمیر کے اسکولوں میں چھاتروں کو پڑھانے کے طریقے سے وہاں کے چھاتر کٹر پنتھ کے راستے پر چلے جاتے ہیں. ماجد جہانگیر, بی بی سی, سری نگر.
کانگریس کے کیندریہ نیتتو نے کرناٹک کے مکھیمنتری سدھ رمیہ کو صلاح دی ہے کہ وہ وکاس کے ایجنڈے پر زور دیں اور بھاجپا دوارا کھیلی جانے والی سامپردائکتا کی راجنیتی میں نہ پھنسیں. दिल्ली में कल हुई कर्नाटक के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये सलाह दी। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव इस साल अप्रैल या मई की शुरुआत में हो सकते हैं। बेंगलुरु से सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के बाद ये बात तो स्पष्ट हो गई थी कि कांग्रेस का केंद्र नेतृत्व सिद्धरामैया को कुछ सलाह देगा, खासकर कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। ये इसलिए प्रत्याशित था क्योंकि सिद्धरामैया ने बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति को चरमपंथी कह दिया था। जब बीजेपी प्रदर्शन करने लगी और सोशल मीडिया पर आलोचना उनकी हुई तो सिद्धरामैया ने अपना बयान तो बदल दिया, लेकिन उनके विकास कार्यसूची का मुद्दा पटरी से उतर गया। कर्नाटका कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश गुंडराव ने बीबीसी को बताया, सिद्धरामैया की सरकार ने जो विकास का काम किया हमारा फोकस उस पर होगा। बीजेपी सिर्फ उसके नफरत के एजेंडे पर फोकस कर रही है क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। आज ऐसी परिस्थिति है कि बीजेपी सांप्रदायिकता के एजेंडे पर लोगों में डर का माहौल बना रही है। ये थे दिनेश गुंडराव के शब्द। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सिद्धरामैया की सरकार को एक हिंदू विरोधी सरकार कहा और ये भी इल्जाम लगाया कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के दिए हुए कोष का दुरुपयोग किया है। सिद्धरामैया ने उनसे कहा था कि उनको ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं है और अगर उनको जवाब देना ही है तो वो कर्नाटका की विधानसभा में देंगे। तो इस सारे मामले को कांग्रेसी नेतृत्व किस तरह देखता है? हमने ये सवाल दिल्ली में प्रजावाणी कन्नड़ा अखबार के वरिष्ठ पत्रकार डी उमापति से पूछा तो उन्होंने कहा,
पार्टी हाईकमांड कर्नाटक विनायक सूचना कोट्टिदे।
कांग्रेस हाईकमांड ने स्पष्ट तौर से सिद्धरामैया को कह दिया है कि वो बीजेपी के जाल में ना गिरे। दरअसल बीजेपी में इतनी गुटबंदी है कि शायद उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। इसके मद्देनजर राहुल गांधी की सलाह दी गई है। ये थे डी उमापति के शब्द। कांग्रेस का मानना है कि उसके पास सिद्धरामैया जैसे एक शक्तिशाली क्षेत्र नेता हैं, जो उसके पास गुजरात जैसे राज्य में नहीं था। बहरहाल राहुल गांधी कर्नाटका का दौरा 10 फरवरी से शुरू करने वाले हैं। जब चुनाव की गर्मी बढ़ेगी तो कांग्रेस अपने पत्ते कैसे खोलेगी वो आगे देखना होगा। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
आंचल ठाकुर स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वो 21 साल की हैं और हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। उनकी इस उपलब्धि की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। आंचल ने अल्पाइन एडर कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। ये टूर्नामेंट तुर्की में इंटरनेशनल स्की फेडरेशन की ओर से आयोजित किया गया था। इस कामयाबी पर आंचल को सबसे पहले बधाई देने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। हमारी सहयोगी इंदु पांडे ने आंचल से खास बातचीत की।
हाय, मैं हूँ आंचल ठाकुर और आप सुन रहे हैं बीबीसी न्यूज मेकर। लोग बहुत कम सोचते हैं स्कीइंग के बारे में और जब हम इसको लेके चले थे तो अभी अपने कंपटीशन से पहले मैंने मेडल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो जाए, जिसके लिए हमको 140 से कम पॉइंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन जो हमारी रेस थी वो इतनी डिफिकल्ट थी कि जो हमारी टॉपर है उसके भी 140 से कम पॉइंट्स नहीं आए, तो ये सब कुछ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था।
कुछ सवाल ऐसे हैं जो इनसे हर बार पूछे जाते हैं।
अच्छा, स्काई करते हो आप? भारत में तो स्कीइंग को पहले उनको प्रोनाउंस करना नहीं आता, वो स्काई बोलते हैं। कॉलेज में भी लोग परेशान हो जाते हैं ये सोच सोच के कि बर्फ पे कोई कैसे फिसल सकता है, बर्फ में खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है तो फिसल कैसे सकता है। और जब बाहर जाते हैं तो वो बिलीव नहीं कर पाते कि इंडिया का भी कोई स्की कर सकता है। इंडिया इज सो हॉट कंट्री, तो इंडिया से स्की करने वाले कहाँ से पैदा हो गए।
और मेडल जीतने के बाद सबसे पहला मैसेज किसका था?
सबसे पहले जो पहला ट्वीट देखा मैंने वो था हमारे प्राइम मिनिस्टर का और आई वॉज लिटरली अबाउट टू क्राई। मुझे समझ नहीं आ रहा था अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करूँ। आई वॉज लाइक, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं उस टाइम क्या फील कर रही थी। अब मुझे लग रहा है कि इंडिया के लोगों को पता चल गया है, वो भी सीरियस हो जाएंगे इस गेम के बारे में, गवर्नमेंट भी सीरियस हो जाएगी इस गेम के बारे में, तो अब ये एक टर्निंग पॉइंट आ गया है विंटर स्पोर्ट्स के लिए इंडिया में। मैं माउंट एवरेस्ट पे स्की करना चाहती हूँ एक बार जिंदगी में। अभी 2018 का ओलंपिक्स है, अगर वो नहीं हो पाया तो फॉर श्योर मैं बहुत मेहनत करूंगी 2022 के ओलंपिक्स के लिए। मेरे ऊपर अभी बहुत स्ट्रेस है क्योंकि मुझे 5 रेसेस क्वालिफाई करनी है और बचे सिर्फ 10 दिन है, तो इट्स अ बिग डील।
तो फंड की क्या सिचुएशन है इस खेल में?
हाँ जी, फेडरेशन जो हमने इक्विपमेंट्स लिए है पापा के खर्चे से ही लिया है, जो भी इक्विपमेंट लिया है, लेकिन जो बाकी ट्रेनिंग के लिए कई बार हमको फेडरेशन पे करती है उसके लिए ट्रेनिंग्स के लिए, लेकिन इक्विपमेंट जितने भी स्कीयर्स है आज इंडिया में उन्होंने इक्विपमेंट खुद अपने पैसों से लिया है। बट आई होप अब हमको स्पॉन्सर मिल जाए, गवर्नमेंट हेल्प करे, हमको इक्विपमेंट्स दें, आने वाले स्कीयर्स के लिए ये बहुत फायदा होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हूँ, मेरी वजह से उनको भी कुछ मिले आगे।
ये थी स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल करने वाली आंचल ठाकुर। और अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की रिपोर्ट खेल समाचारों में।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
हल्का से एक रोमांच आ गया मैच में और फिर से बॉल ऊपर, पार्थिव पटेल पहुंचे नहीं, रनआउट का चांस और एक रनआउट, दोनों बल्लेबाज एक एंड पर, बहुत बड़ी वापसी।
कल ये वो पल थे जब दक्षिण अफ्रीका के वर्नोन फिलेंडर बिना कोई रन बनाए पार्थिव पटेल के थ्रो पर हार्दिक पांड्या के हाथों रनआउट हो गए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट पर 251 रन हो गया, जबकि एक समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर 246 रन था, लेकिन इसी स्कोर पर हाशिम आमला 82 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर एक तेज रन लेने की कोशिश में हार्दिक पांड्या के सीधे थ्रो पर रन आउट हो गए और उसके बाद क्विंटन डिकॉक और अश्विन की पहली ही गेंद पर स्लिप पर खड़े कप्तान विराट कोहली को कैच दे बैठे। ये सब कुछ हुआ कल से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन, जहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 6 विकेट खोकर 269 रन बनाए। स्टंप के समय कप्तान फैफ डु प्लेसी 24 और केशव महाराज 10 रन बनाकर नाबाद थे। दक्षिण अफ्रीका की सलामी जोड़ी डीन एल्गर ने 31 और एडन मार्करम ने 94 रन बनाकर भारत के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी थी, लेकिन कल खेल समाप्त होते होते भारत ने केवल 5 रनों के भीतर दक्षिण अफ्रीका के 3 बल्लेबाजों को पेवेलियन की राह दिखाकर राहत की सांस ली। भारत के आर अश्विन ने 90 रन देकर 3 और ईशांत शर्मा ने 32 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। उधर कल से न्यूजीलैंड में अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ, जहां ग्रुप ए में मेजबान न्यूजीलैंड ने पिछले चैंपियन वेस्टइंडीज को 8 विकेट से मात दी। ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम आज अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी। वहीं मेजबान न्यूजीलैंड ने डुनेडिन में खेले गए 30 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल पाकिस्तान को 183 रन से करारी मात दी। जीत के लिए 258 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी पाकिस्तानी टीम 27.2 ओवर में केवल 74 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का झटका पाकिस्तान को जोर से लगा, जिन्होंने 17 रन देकर 5 विकेट झटके। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज अपने 4 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। इस दौरे पर उनके साथ 100 से अधिक सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ सदस्यों के चीफ जस्टिस के खिलाफ आवाज उठाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कल इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच को विचार करना चाहिए। कल अमरीका के हवाई द्वीप पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की चेतावनी गलती से जारी हो गई। इसका संदेश लोगों के फोन तक चला गया और टीवी एवं रेडियो पर यह तक खबरें प्रसारित हो गईं कि लोग बचने के लिए सुरक्षित जगह तलाश करें। दाम और टैक्स की बढ़ोतरी से देश की गरीब जनता की मदद के लिए ट्यूनिशियाई सरकार ने अपनी योजनाओं की जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि 2.5 लाख परिवारों की मदद के लिए वो 7 करोड़ डॉलर अलग रखेगी। कई रिपोर्टों के अनुसार विद्रोहियों के कब्जे वाले सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाकों में क्लोरीन गैस का हमला हुआ है। इराकी राजधानी बगदाद के उत्तरी बाहरी इलाके में एक आत्मघाती विस्फोट में 8 लोग मारे गए हैं। दावोस में इस महीने के आखिर में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के विरोध में स्विट्जरलैंड की राजधानी बन में पूंजीवादी विरोधी हजारों लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया देवाशीष कुमार ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया विभुराज ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।